नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट, आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब बिना चिकित्सीय परामर्श के गर्भ संबंधी दवाओं की बिक्री नहीं होगी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, उत्तराखंड की बेटियां अपने साहस और प्रतिभा से प्रदेश और देश को नई दिशा दे रही हैं। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आशा भट्ट और समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर और हरिद्वार जिले में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली जिले में भी सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में एक दिन का अवकाश घोषित किया है। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि राज्य में आने वाले दिनों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा जारी रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण राज्य लगातार चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिए भूस्खलन और जलभराव की आशंका को ध्यान में रखते हुए पूरी सतर्कता बरती जाए। देहरादून में एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए तेजी से कार्य हो और प्रभावितों को मैदानी क्षेत्रों में बसाने के विकल्पों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने ज्योतिर्मठ मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमक नाले में बहे पुल पर जल्दी बेलीब्रिज बनाने और गंगोत्री हाईवे को यात्रा से पहले सुरक्षित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात खत्म होते ही सड़कों पर पैचवर्क और निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। उत्तरकाशी के हर्षिल और स्याना चट्टी में बनी झीलों पर नजर रखने, जलस्तर नियंत्रित करने और मलबा हटाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के जलस्तर पर दिन रात निगरानी रखी जाए और खतरा महसूस होने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC की सुरंग में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन, SDRF और BRO की संयुक्त टीम ने तेजी से राहत और बचाव कार्य करते हुए सुरंग में फंसे सभी 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी तरह सुरक्षित हैं। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र में भूस्खलन की घटनाओं पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें ताकि राहत कार्य समय रहते और प्रभावी ढंग से संचालित किए जा सकें। प्रदेश में आपदा प्रबंधन और राहत कार्य तेज गति से जारी हैं। भारी बारिश और मलबे से बंद हुई 1,827 सड़कों में से 1,747 को खोल दिया गया है, जबकि 80 पर काम चल रहा है। जहां मलबा आने की आशंका थी, वहां पहले से आवश्यक मशीनें और संसाधन तैनात किए गए थे, जिससे बंद सड़कों को तेजी से खोला जा रहा है। मुख्यमंत्री लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार ने सड़कों, बिजली, पानी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बहाल करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और सभी विभाग समन्वय बनाकर राहत कार्यों में जुटे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान को हमेशा याद रखेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। श्रीनगर गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र के चकरगांव कल्याणखाल मोटरमार्ग के डामरीकरण के लिए शासन से प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। इस योजना के लिए 1,09,15,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि ये सड़क क्षेत्रों की वर्षों पुरानी मांग थी और इसके बनने से स्थानीय लोगों के साथ ही गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लोगों को भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की रीढ़ होती है और इससे विद्यार्थियों, किसानों व व्यापारियों को सीधा लाभ होगा। उत्तराखंड राज्य न्यायिक सिविल सेवा न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 21,175 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से केवल 9,730 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि ये परीक्षा राज्य के 4 जिलों के 5 नगरों में स्थित 49 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में अब बिना चिकित्सकीय परामर्श के गर्भ संबंधी दवाओं की बिक्री नहीं होगी। निसोप्रोस्टोल दवा की अनधिकृत बिक्री पाए जाने पर मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव सभागार में हुई राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक में डॉ. रावत ने सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा करने और भ्रूण लिंग परीक्षण व भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण 21 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए ग्राम प्रधान, आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा जन्म पंजीकरण और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड की बेटियां अपने साहस और प्रतिभा से प्रदेश और देश को नई दिशा दे रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में वे प्रदेश को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल ने मातृशक्ति, युवाओं, शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। राज्यपाल ने कहा कि योग, आयुर्वेद, शहद, अरोमा और वेलनेस जैसी प्राकृतिक संपदाएं प्रदेश के अनमोल धरोहर हैं, जिनका उपयोग कर आर्थिक अवसर पैदा किए जा सकते हैं। शिक्षा और शोध पर जोर देते हुए राज्यपाल ने कहा कि देहरादून देश और विदेश का प्रमुख शिक्षा केंद्र बन चुका है। अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने से नई खोज और विचार सामने आएंगे। युवाओं से उन्होंने नई तकनीकें सीखने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जैसी तकनीकें भविष्य को आकार देंगी। राष्ट्रीय खेल दिवस पर चंपावत जिले में 29 से 31 अगस्त तक विभिन्न खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्पोर्ट्स स्टेडियम टनकपुर और स्पोर्ट्स स्टेडियम छमनिया लोहाघाट में हॉकी, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स की जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के साथ वाद विवाद, निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुए। खेलो इंडिया साइंस सेंटर के बच्चों ने फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिलिंग रैली निकाली, जिसमें बच्चों, ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान साइकिल की उपयोगिता और स्वस्थ जीवन के लिए इसके महत्व पर जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई गई। 84 उत्तराखंड वाहिनी एनसीसी रुड़की की ओर से आयोजित प्री थलसेना शिविर के बाद राज्य के 91 कैडेट्स का दल कल दिल्ली रवाना हुआ। ये कैडेट्स आज से दिल्ली कैंट में शुरू हो रहे राष्ट्रीय थल सेना शिविर में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय थल सेना की ओर से आयोजित इस शिविर में देशभर के चयनित कैडेट्स को अनुशासन, हथियार संचालन, फील्ड क्राफ्ट, मैप रीडिंग और फायरिंग जैसी गतिविधियों का प्रशिक्षण मिलेगा। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रदेश में हो रही बारिश, जनजीवन प्रभावित होने की खबर सभी समाचार पत्रों की सुर्खियों में है। दैनिक जागरण समाचार पत्र का शीर्षक है, दून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टी। इसी खबर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र का शीर्षक है, 260 सड़कें बंद, सीएम ने कहा तत्काल खोलें। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने वाला तमक नाले पर बना पुल बहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज भारी बारिश का अलर्ट, आने वाले दिनों में भी बारिश का अनुमान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रदेश में अब बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के गर्भ संबंधी दवाओं की बिक्री नहीं होगी। वह राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, उत्तराखंड की बेटियां अपने साहस और प्रतिभा से प्रदेश और देश को नई दिशा दे रही हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वान्ह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।